ओम शांति। ग्रुप नंबर दो, अपने को त्रिकालदर्शी अनुभव करते हो, संगम युग पर बाप सभी आत्माओं को त्रिकालदर्शी बनाते हैं क्योंकि संगम युग है श्रेष्ठ ऊंचा, तो जो ऊंचा स्थान होता है वहां खड़ा होने से सब कुछ दिखाई देता है, तो संगम युग पर खड़े होने से तीनों ही काल दिखाई देते हैं। एक तरफ दुखधाम का ज्ञान, दूसरे तरफ सुखधाम का ज्ञान और वर्तमान काल संगम युग का भी ज्ञान, तो त्रिकालदर्शी बन गए ना। तीनों ही काल का ज्ञान इमर्ज है, तीनों ही काल स्मृति में रखो। कल दुखधाम में थे, आज संगम युग में है और कल सुखधाम में जाएंगे। जो भी कर्म करो वो त्रिकालदर्शी बन करके करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, व्यर्थ नहीं होगा, समर्थ होगा। समर्थ कर्म का फल समर्थ मिलता है, तो जो भी कर्म करो वह त्रिकालदर्शी बन कर करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। जो भी कर्म करो वो त्रिकाल का ज्ञान बुद्धि में हो, त्रिकालदर्शी त्रिकालज्ञ भी कहते हैं इसे। तो हमारे कर्म श्रेष्ठ कब होंगे? जब हम हर कर्म त्रिकालदर्शी स्थिति में करेंगे। और कर्म कब श्रेष्ठ होंगे? जब कर्म श्रेष्ठ कब होंगे? जब स्थिति श्रेष्ठ होगी, तो जो कर्म श्रेष्ठ स्थिति में किए जाते हैं वो कर्म श्रेष्ठ होते हैं, और जो कर्म श्रीमत अनुसार किए जाते हैं वो कर्म श्रेष्ठ होते हैं, और जो कर्म स्वमान में स्थित होकर किए जाते हैं वो कर्म श्रेष्ठ होते हैं, परमात्मा याद में किए जाते हैं वो कर्म श्रेष्ठ होते हैं।
करने के पहले जो सोचे,
सोच समझ कर किए हुए जो भी कर्म है वह श्रेष्ठ होते हैं, और
कर्म योग में किए हुए
बाप की याद में, स्वमान में या याद में, और श्रेष्ठ संकल्प स्मृति स्वरूप निमित्त भाव मैपन से रहित जो कर्म है, जिसमें निमित्त भाव है, जिसमें ट्रस्टीपन है, निरंकारिता है, निर्माणता है, वो जो भी कर्म इस भाव में स्थित होकर किए जाते हैं वो श्रेष्ठ कर्म है, और निमित्त भाव है वो करा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। श्रेष्ठ भावनाएं, निस्वार्थ भावनाएं, भाव और भावनाएं शुभ कल्याण के, अपनेपन के, महान श्रेष्ठ हो गए तो, और इसमें एक श्रद्धा या निस्वार्थ, जो कर्म निस्वार्थ, आज भी कहा निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे तो सेवा का मेवा मिलेगा, आज का स्लोगन निस्वार्थ भाव से किए हुए सारे कर्म जो है वो श्रेष्ठ है। निमित्त भाव, निस्वार्थ भाव, निष्काम, आज की आज का वरदान है निष्काम रहम दिल, जो निष्काम भाव से जो भी कर्म किए जाते हैं वो श्रेष्ठ है। बाबा ने तो आज तक ये भी कहा कि जो निष्काम भाव से निष्काम रहम दिल बन सेवा करते हैं उनके पास जैसे कि एक जादू की चाबी है दुख को, दुखी को सुखी बनाने की। तो निष्काम, निस्वार्थ, निमित्त, शुभ भावना, मैपन से मुक्त रहकर किए हुए कर्म, श्रीमत पर किए हुए कर्म, सोच समझकर स्वधर्म में स्थित होकर किए हुए कर्म, आत्मिक स्मृति में, परमात्मा स्मृति में, स्वमान में, याद में, योग में, और यहाँ आज कहा जो भी कर्म करो वह त्रिकालदर्शी बन करके करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। त्रिकालदर्शी स्थिति,
टैली करो ब्रह्मा बाप समान।
हाँ, हर कर्म को चेक करो कि बाप समान है, टैली करके कर्म करो। और भी कुछ बोलते हैं? अव्यक्त,
अव्यक्त लाइट,
लाइट।
अच्छा, लाइट है तब कर्म करोगे ना,
हल्के होकर, भारीपन भारी होकर कर्म नहीं करो, लाइट होकर कर्म करो। फॉलो फादर, जो भी कर्म फॉलो फादर होंगे वो सब श्रेष्ठ होंगे, महान होंगे। संगम युग की भी स्मृति अगर रहे तो भी कर्म महान होंगे। हम किस युग में है, समय कौन सा चल रहा है, किस कुल के है, किस बिरादरी के है, देवी देवता कुल के है, इस बिरादरी के, किस वंश के, किस कुल के, किस डायनेस्टी के है, तो सारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, व्यर्थ नहीं होगा, समर्थ होगा। त्रिकालदर्शी, त्रिकाल हमारी बुद्धि में हो, जितने भी अवतार हुए हैं उनके दिखाया कि जो भी कर्म उन्होंने किए वो सब त्रिकालदर्शी स्थिति में किए, जैसे कि उनको पहले ही पता था। त्रिकालदर्शी अर्थात जिसको तीनों कालों का ज्ञान है। त्रिकालदर्शी अर्थात, त्रिकालदर्शी एक तो समय के लिए भी है, युग के लिए भी है, ड्रामा के लिए त्रिकाल,
साक्षी दृष्टा
उपरांत घटनाओं के लिए भी है, हमारे अपने जीवन के लिए। तो ड्रामा के लिए त्रिकालदर्शी, ड्रामा में पहले क्या था, बीच में क्या है और क्या होने वाला है, अब क्या है और क्या होने वाला है, ये ड्रामा के रीति से त्रिकाल दर्शन। एक हमारी आत्मा का पार्ट जो परम धाम, सतयुग में क्या था, द्वापर में क्या था, त्रेता में क्या था, संगम में क्या है और वापस सतयुग में क्या होगा। एक हमारे जीवन की घटनाओं के बारे में, हमारे जीवन में अब तक क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। पुरुषार्थ के बारे में त्रिकालदर्शी, पहले पुरुषार्थ क्या था, अब पुरुषार्थ क्या है और क्या कैसा होगा। पुरुषार्थ के बारे में त्रिकालदर्शी, घटनाओं के बारे में त्रिकालदर्शी, समय के बारे में त्रिकालदर्शी। तो मैं कह रहा था जो भी अवतार हुए वो जो भी कर्म करते थे वो श्रेष्ठ होते थे, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी स्थिति में करते थे। जैसे कि दिखाया श्री कृष्ण के लिए, वो जो भी कुछ कर्म कर रहा है जैसे उसे पहले ही पता है कि उसका परिणाम भी क्या होने वाला है, इसके लिए जो कर्म उससे हो रहा है वो सभी महान है, सभी श्रेष्ठ है। उनके उसके कर्म का उसको खुद को कोई पश्चाताप भी नहीं है, जैसे वो पहले से तैयार है उन बातों के लिए। वो पांडवों का शांति दूत बनकर जाता है, शांति प्रस्ताव लेकर जाता है। क्या उसे पता नहीं था कि ये शांति प्रस्ताव ये लोग अस्वीकार कर देंगे, कौरव युद्ध तो अटल है, फिर भी वो शांति दूत बनकर कौन जाता है, श्री कृष्ण ही जाता है और कोई नहीं जाता, कोई तैयार नहीं होता है जाने के लिए। और वो समझाने बुझाने की कोशिश करता है उनको, क्या उसको क्या ये पता नहीं था कि ये नहीं समझेंगे, फिर भी जाता है। नहीं, हम बात करें त्रिकालदर्शी स्थिति की, उन्होंने तो पहचाना ना, वो तो है ही, ये त्रिकालदर्शी स्थिति है। जैसे उसकी, उसे पता है क्या घटित होने वाला है भविष्य में, अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का, जैसे उसके पास ज्ञान है। इस ज्ञान के आधार से उसकी स्थिति कभी हिलती नहीं है, नहीं तो वो शांति दूत बन कर गए। हम अगर शांति दूत बन कर गए होते, हमने दुर्योधन को बहुत कुछ समझाया होता और दुर्योधन ने हमारा अपमान कर दिया होता तो हम दुखी तो हो गए थे थोड़ा। नाम ही था शांति दूत। तो व्यर्थ नहीं होगा, समर्थ। इसके लिए अवतार, उन्हें सब कुछ जैसे पता है पहले से क्या होने वाला है। जीसस क्राइस्ट के भी जीवन में दिखाते क्या क्या होने वाला है, जैसे वो पहले ही उसे पता है। इसके लिए कोई भी बात उसको प्रभावित नहीं करती, अटल रहता है, अचल रहता है। समर्थ कर्म का फल समर्थ मिलता है त्रिकालदर्शी बनने से। यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था। हम हमारी बुद्धि चलाते हैं, ये जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है। भगवान को भी हम समझाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, ये नहीं ये है। बाबा क्या बोल रहे हो, ये दिवाली नहीं है। कौन है वो जो उसके पास तीनों कालों का ज्ञान है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, तेजस्वियों का तेज है, तपस्वियों का तप है, बलवानों का बल है, विवेकी का विवेक है। उसके पास जो ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है। तो यह सब क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाते हैं,
सुन लेता
है। ये उसकी निरंकारिता, इसी निरंकारिता के वजह से भक्ति में क्या हो गया, कल की मुरली में मंदिर किसके बने,
सोने के मंदिर
बने। उसने अपने निरंकारिता का भी प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। अगर हमें कोई कहता कि ये नहीं वो, तो हम क्या कहते? बताया हमें सब, बताने की जरूरत नहीं है, कहते ना हम अल्प बुद्धि। नहीं तो बहुत क्वेश्चन उठते हैं, ऐसा क्यों? और एक एक प्रश्न जो उठता है उसके 10-10 उत्तर, और एक एक उत्तर से हजार प्रश्न, ये कुचक्र चालू होता है फिर प्रश्न उत्तर का। क्यों का क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती, और त्रिकालदर्शी बनने से फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, नो फर्दर क्वेश्चन, कोई तर्क नहीं, कोई भी तर्क नहीं, नथिंग न्यू। तो फुल स्टॉप लग गया ना, फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगने से बिंदु रूप सहज याद आ जाता है। बाप दादा सदा कहते कि अमृत वेले सदा कौन सा तिलक लगाओ, तीन बिंदियों का तिलक लगाओ, आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह तीन बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक, मस्तक स्मृति का स्थान है, इसलिए मस्तक तिलक मस्तक पर ही लगा दे। तीन बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। यह क्यों और क्या ही हलचल है, क्यों और क्या यही हलचल है। तो अचल रहने का साधन है अमृत वेले तीन बिंदुओं का तिलक लगाओ, यह भूलो नहीं। जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ, ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गए। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक न लगे तो एक्सीडेंट, समय होगा फायदा होगा या नुकसान, तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था वो रहा है, और साक्षी होकर के देख कर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों का ज्ञान, जैसा समय वैसे अपने को सदा सेफ रख सको। ऐसे नहीं कहो कि यह समस्या बहुत बड़ी थी, छोटी होती तो मैं पास हो जाता, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। ये मत कहो खुदा से क्या मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से क्या कह दो नागेश भाई, मेरा खुदा बड़ा है। तूफान आंधी आए तो उनका क्या करो, खैर मकदम, वेलकम करो उनका, स्वागत आओ भगत करो। यह समस्या बहुत बड़ी थी, ऐसा नहीं कहो, छोटी होती तो मैं पास हो जाता, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। बाबा क्या कहेगा अगर ऐसा बोला बाबा को, तो बाबा आपको पता नहीं वो बहुत बड़ी समस्या थी, आप तो छोटा समझ रहे हो, छोटी नहीं थी वो, बहुत बड़ी थी, तो क्या कहेगा वो,
शेर के बच्चे
मारेगा वो। कितनी भी बड़ी समस्या हो लेकिन आप तो कौन हो, हर समस्या से बड़ा मैं हूँ, ये हमारा सम्मान है, हर परिस्थिति से बड़ा मैं हूँ।
समस्या है।
समस्या को क्या बनाकर खा लो डॉक्टर मुरली सर, समोसा बनाकर खाने को कहा है बाबा ने। लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो बड़े हुए ना, बड़े के आगे समस्या नहीं है लेकिन खेल है, मनोरंजन है। परिस्थिति क्या है, मरी हुई चींटी है, पेपर टाइगर है, कुछ है ही नहीं, टेस्ट पेपर है, खुशी खुशी से पास करना है पेपर को। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई पड़ी है, गारंटी है विजय की। जब अपने को जिम्मेवार समझते हो तब चिंता होती है, और बाप को जिम्मेवार समझते हो तो निश्चिंत हो जाते हैं। कई बार कहते हैं ना क्या करे, जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है, लेकिन ट्रस्टी पर निभाओ, गृहस्थी बनकर निभा नहीं सकेंगे, ट्रस्टी बनकर के निभाने से सहज भी होगा और सफल भी होगा। तो सब चिंता छोड़कर जाना, जिसके पास थोड़ी बहुत हो तो छोड़कर जाना, साथ नहीं ले जाने। वैसे तीर्थ पर कुछ छोड़कर आते हो तो यह भी महान तीर्थ है ना, तो सदा के लिए निश्चिंत, निश्चय बुद्धि, समझा? किचड़ा साथ में नहीं रख जाना। माताओं को आदत होती है कौन सी, छिपा छिपा कर रखने की। पुरानी चीज भी होगी तो गांठ बांध कर रख देगी, तो यह भी गांठ बांध कर नहीं जाना। माताएं गठरी बांधती और पांडव जेब में रखते हैं। तो इसे छोड़कर निश्चिंत अर्थात सदा अचल अडोल स्थिति में रहना। अच्छा, तो क्या सुना बाबा कह रहे हैं, सदा ही त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहना, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, महान होगा, शुद्ध होगा। हर कर्म व्यर्थ नहीं होगा, समर्थ होगा। और फिर बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनने से जितने भी तुम्हारे प्रश्न हैं सब समाप्त हो जाएंगे। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था। बाप को ड्रामा पसंद है, बाप को ड्रामा का हर एक्टर पसंद है, बाप को ड्रामा के हर एक्टर की हर एक्शन पसंद है। तो संडे की मुरली जो बाप की पसंदी, वो तुम बच्चों की पसंदी, जो उसे अच्छा लगता है वो तुम्हें भी अच्छा लगे। बाप सदा कहते हैं कि अमृत वेले क्या करो, ये तीन बिंदुओं का तिलक लगाओ, सब बिंदी, कोई संकल्प नहीं। ये तीन बिंदी रहेंगे तो ये क्या क्यों नहीं होगा, ये क्या क्यों ही क्या है, अचल, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। तो अमृत वेले ये तीन बिंदु लगाओ, इसे भूलो नहीं। जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। कितने देर में फुल स्टॉप लगाएंगे चिमन भाई, 10 मिनट, सेकंड से भी कम,
पहले से लगा दिया
पहले से ही लगा देंगे 10 सेकंड, 10 मिनट, 10 दिन, 10 घंटा, 10 दिन, 10 हफ्ता या 10 साल हो गए आज किसी किसी बात को, फिर भी पूर्ण विराम नहीं लगा है, चली रही है वो बात। अगर वो होता तो आज ये ना होता, आज उस समय मैंने अगर ऐसा किया होता तो आज ऐसा ना होता। 10 साल हो गए फिर भी फुल स्टॉप लगा नहीं है, और बाबा बात कर रहे सेकंड्स की। तो त्रिकालदर्शी अर्थात फुल स्टॉप, त्रिकालदर्शी की परिभाषा। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन समय भूल गया। बाबा उदाहरण दे रहे गाड़ी का, अगर समय पर ब्रेक नहीं लगा तो दुर्घटना हो जाएगी। दुर्घटना से क्या क्या हो जाएगा, ड्राइवर को भी लगेगा, गाड़ी को भी लगेगा, हमारी गाड़ी को भी लगेगा, और सामने वाले भी घायल होंगे, सामने वाले की गाड़ी भी खराब होगी, पैसेंजर्स, अच्छा अगर बड़ी गाड़ी लेके जा रहा है तो और जब ट्रैफिक, और ट्रैफिक भी ब्लॉक हो जाएगा एक्सीडेंट अगर हो गया तो। इसके लिए तुरंत फुल स्टॉप लगाते आना चाहिए। इसके लिए संकल्पों की स्पीड भी कम चाहिए, फिर अगर बहुत ज्यादा स्पीड है तो ब्रेक नहीं लगेगा। अनियंत्रित संकल्प ब्रेक लगाना मुश्किल है, श्रेष्ठ संकल्प जितने होंगे उतनी हल्की स्थिति। अब ने कहा ना संगम युग जो है वो टॉप का स्थान है, कहा ना यहाँ पर संगम युग सबसे ऊंचा स्थान है। तो हम कौन है, सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाले है, ऊंची स्थिति में रहने वाले, ऊंचे स्थान में रहने वाले, और आबू में रहने वाले, वो भी मधुबन में रहने वाले सबसे ऊंचे इस संसार में। जो चीज जितनी ऊंची होती है उतनी वो हल्की होती है, तो ऊंचे स्थान पर रहने वाले हल्के होते हैं। वो दिखाया है यूरी गार्गिन, गार्गिन जो प्रथम मानव था जो कि अंतरिक्ष में गया, यूरी गार्गिन नाम का, 12 अप्रैल 1961 सबसे पहला व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में गया यूरी गार्गिन, उसने अपने संस्मरण में लिखा हुआ है कि जब मैं अंतरिक्ष में, वो कितना समय था, 1 घंटा 1 आवर 48 मिनट्स, इतना ही समय वो अंतरिक्ष में था और फिर नीचे आया। उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि जब मैं ऊपर था तो मुझे इतना हल्केपन का महसूसता हुई कि हम जो ये धरती पर रहते कितने भारी होकर जीते, हम तो समझते हम बहुत हल्के, पर ये हल्कापन है ही नहीं। जैसे कि अंतरिक्ष में जैसे गया, जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति समाप्त हो गई, वो जो फोर्स था, और मुझे एकदम हल्का अनुभव हुआ पहली बार जीवन में। वो प्रथम मानव है जो कि अंतरिक्ष में गया, अंतरिक्ष यात्री, कॉस्मोनॉट उसको कहते हैं। तो उसने अपने अनुभव में लिखा कि जैसे हम ऊंचे जाते हैं तो हल्कापन का अनुभव होता है। तो ये तो स्थूल था, स्थिति जब ऊंची हो जाती है तो भी हल्कापन का अनुभव होता है, और जब ऊंचे स्थान पर होते हैं तो सब कुछ दिखाई देता है नीचे का। अनादरा के वहां खड़े रहो तो नीचे का सब दिखाई देता है, कहां क्या चल रहा है, कहां कौन सी गड़बड़ चल रही है। पर जो नीचे वाले व्यक्ति है उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो हमारे जीवन में भी अगर हलचल है तो स्थिति को ऊपर कर दो, ऊंचे स्थान से सब दिखाई देगा, फिर अच्छा यहां गड़बड़ है उसको ठीक करो। तो बाबा कह रहे हैं त्रिकालदर्शी, ऐसा भी नहीं समझो कि समस्या बहुत बड़ी थी। हम सब कौन है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, बड़े के आगे समस्या नहीं है लेकिन खेल है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्यों? क्योंकि त्रिकालदर्शी है, निश्चित भावी है, निश्चय बुद्धि भी है और निश्चित भावी भी है। इसके लिए उसको कोई भी बात का आश्चर्य नहीं, नथिंग न्यू। जो होना है वही हो रहा है, जो होना चाहिए था वही हो रहा है, जो हो रहा है वही सत्य है। जब अपने को जिम्मेवार समझते हो तब चिंता होती है। तो यहाँ जिम्मेवार कौन है? बाप। बाबा कहते हैं मैं सारे विश्व का बोझ उठाने के लिए उठाता हूँ, तो तुम्हारा छोटी सी मुश्किल है तुम्हारा बोझ नहीं उठाऊंगा? फिर भी गठरी और टोकरी लिए चलते हो, बाप ने तुमको ताज दिया है। और बच्चे जब गठरी और टोकरी उठाते तो बाप को अच्छा नहीं लगता। तो बाबा क्या कहते हैं, तीर्थ पर जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ छोड़कर जाते हैं। हमारा एक मित्र था, उसकी माताजी जब भी हर साल एक तीर्थ पर जाती थी और हर साल एक ना एक चीज छोड़ के आती थी। जैसे उसको जिलेबी बहुत पसंद है, तो आज अगर वो बद्रीनाथ गई तो संकल्प करेगी आज से जिलेबी बंद। हर साल एक एक चीज एक एक तीर्थ पर संकल्प करके आती थी, छोटी छोटी चीजें जो उसको बहुत पसंद है। तो बाबा कह रहे तीर्थ पर आते हो तो कुछ छोड़कर आते जाते हैं, तो किचड़ा साथ में नहीं रखना। माताओं को आदत होती है पुरानी चीजों को बांधने की, तो इसे छोड़कर निश्चिंत अर्थात सदा अच्छा रडोल स्थिति में रहना। अच्छा, आप सबने सुना होगा मधुबन के पुराने भाई चिनू भाई, जब मैं यहाँ सबसे पहले आया था तो मुझे एक ही चीज था कि ज्ञान को समझना है, ज्ञान क्या है। और उस समय पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, तो फिर मेरी नजर पड़ी लाइब्रेरी पर, तो हमने चिनू भाई से दोस्ती की थी तब किताबों के लिए। तो चिनू भाई कितनी उम्र थी, 78, उन्होंने कल रात में अपना शरीर छोड़ा। एक हफ्ता पहले उन्हें बहुत मेजर हार्ट अटैक आया था। वो हार्ट अटैक तो इतना बड़ा हार्ट अटैक था कि उस हार्ट अटैक के साथ 50-60% जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल पहुंचते ही नहीं है, फिर भी वो तो चल के आए, उनको कोई तकलीफ नहीं। हार्ट अटैक, साथ में हार्ट फेलियर, साथ में छाती में पूरा पानी भरा था। ये इतना बड़े कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें मॉर्टेलिटी 90% से ज्यादा है, परंतु वो सबको पार कर गए। 4-5 दिन हॉस्पिटल में थे, फिर एंजियोग्राफी के लिए अहमदाबाद गए। एंजियोग्राफी भी उसी दिन हो गई और एंजियोप्लास्टी भी हो गई। उनके हार्ट के 2 वेसल्स ब्लॉक थी, दोनों में स्टेंट डाल दिया और दूसरे दिन ही वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अभी 1 हफ्ता से वहां थे, अभी 1-2 दिन में तो छुट्टी होने वाली थी, पर 3 दिन पहले पेट की थोड़ी समस्या हुई, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, फिर भी उसमें से भी निकल गए बाहर। वो भी सब ठीक चालू था, पर कल सुबह लगभग 8 या 9 या 10 बजे अचानक से हार्ट रेट कम हुआ, तो उनको आईसीयू शिफ्ट करके फिर वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। फिर वेंटिलेटर पे डालने के बाद दोपहर तक यूरिन कम था, आउटपुट नहीं था। मतलब जब इतना बड़ा हार्ट अटैक और उसके बाद में मल्टीपल, ये इन सब से निकलने के बाद में भी ये जो पेट की एक समस्या हो गई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, उसके वजह से सेप्टिसिमिया, और सेप्टिसिमिया की वजह से फिर एक एक ऑर्गन, जैसे शरीर ऐसा है कि उसमें एक प्रणाली अगर हिलती है तो एक के बाद एक सब कुछ हिलना चालू हो जाता है। तो बीपी कम था, बीपी के लिए इंजेक्शन चालू किए। कल सुबह मेरी डॉक्टर से बात हुई थी वहां के डिटेल में, फिर दोपहर तक आउटपुट, तो यूरिन आउटपुट बहुत कम था, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर जिसको कहते हैं, एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशन, बीपी कम, यूरिन कम, सेप्टिसिमिया और वेंटिलेटर पर। तो कल लगभग 11:50 को रात को मैंने अपना शरीर छोड़ा। तो हम अभी फुल 5 मिनट बैठकर ऐसी महान तपस्वी आत्माओं के आत्मा के लिए योगदान देंगे। अच्छा, ओम शांति।